श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निकाय की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम दसवां स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 19।
इन दोनों उन्मत्त पुरुषों के
मध्य शराब पीने के कारण बारुणी नामक श्रीमद अंधयो जो दैवी संपद से अंधे हो चुके हैं, तम मदम तमोगुण के कारण इस मिथ्या प्रतिष्ठा को हरिष्यामि छीन लूंगा। त्रैणयो स्त्रियों पर अनुरक्त होने के कारण हजित अस्मनो इंद्रियों को बस में ना कर पाने के कारण अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। इसलिए ये दोनों व्यक्ति बारुणी या माधवी नामक शराब पीकर तथा अपनी इंद्रियों को बस में ना रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्व से अंधे और स्त्रियों के प्राप्ति प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। मैं उनकी यह झूठी प्रतिष्ठा छीन कर रहूंगा। तात्पर्य, जब कोई साधु किसी को डांटता है या दंड देता है तो वह बदले की भावना से ऐसा नहीं करता। महाराज परीक्षित ने पूछा था कि नारद मुनि में किस तरह बदले की भावना तमाह उठी, किंतु यह तमाह नहीं था, क्योंकि नारद मुनि को पूर्ण ज्ञान था कि इन दोनों भाइयों का हित किस में है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि उन्हें किस तरह मार्ग पर लाया जाए। वैष्णव जन अच्छे चिकित्सक होते हैं। वे जानते हैं कि भवरोग से मनुष्यों को किस कैसे बचाया जाए। अतः वे कभी भी तमोगुणी नहीं होते। सगुणान समतिष्ठेतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। वैष्णव जन सदा ही ब्रह्म पद पर स्थित होते हैं। वे ना तो कभी कोई गलती करते हैं, ना ही भौतिक गुणों के वशीभूत होते हैं। पूरी तरह सोच विचार कर वे जो भी करते हैं वह सबको भगवत धाम ले जाने के लिए मार्गदर्शक होता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विश्वशून्यवादे पाशस्य देशकारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरकृते नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो अभी दोनों यमला अर्जुन जो वृक्ष बन गए थे, कुबेर की दो बेटे नल कुबर और मणिग्रीव, ये दोनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों स्वर्ग में कैलाश, कैलाश के जो गंगा नदी है ऊपर बहती है, वहां जाके ये लोग क्या कर रहे थे, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे जल में। और नारद मुनि हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, और नारद मुनि ये देख के उनको दया आया इन दोनों के ऊपर कि दोनों जीव क्या कर रहे इधर, भगवान को बोल के इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त है। तो उन लोग के प्रति दया आया कि इन लोग को कैसे उद्धार किया जाए। तो उनको उद्धार करने के लिए तो अलग ट्रीटमेंट किए उन लोग को। उन लोग को ऐसे नहीं बोले चलिए महामंत्र जप करते हैं, संडे फीस्ट अटेंड करते हैं। उन लोग को पॉजिटिव कुछ बताया नहीं करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या थे, तभी अंधे हो गए थे इंद्र तृप्ति में। जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति में मग्न होकर अंधा हो जाता है, उन लोग को आप अगर कुछ प्रोसेस देंगे, पॉजिटिव प्रोसेस देंगे, अच्छे बात करेंगे, तो उन लोग को नहीं जमेगा, सुनेंगे नहीं आपका। कहाँ से आगे हरे कृष्ण वाले, अभी जाओ यहाँ से, व्यस्त है हम, बुक डिस्कशन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जब साधु जाते हैं द्वार पे तभी सुनते नहीं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग इंद्र तृप्ति में मग्न रहते हैं। तो एक बार मैं एक बुक डिस्कशन करते करते एक रेस्टोरेंट बियर बार था, वहां गया था। सारे लोग पी के सब मांस खा रहे थे, बैठे थे। तो उधर जाके जैसे ही मैं बुक दिया, ग्रंथ लीजिए, बोले चल यहाँ से, कहाँ से आ गया हरे कृष्णा वाला, कोई काम धंधा नहीं है तुमको, ऐसे सब बोलने लगे। और वो जो मालिक बैठा था वो भी बोला मैं नहीं लूंगा भगवद गीता, जाओ यहाँ से। क्योंकि जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति में मग्न रहता है तभी उसको आध्यात्मिक कार्य, अच्छे कार्य अच्छा नहीं लगता उनको। वही व्यक्ति अगर कभी टेंशन में रहेगा, दुखी है, घर में कोई मर गया है, और तो उनके पास जाइए, बोलिए कि भगवद गीता लीजिए, नहीं तो बोलिए कि आप सबको भगवद गीता दान दीजिए, आइए आप कुछ यज्ञ कीजिए, कुछ अच्छे कार्य कीजिए, तो लोगों को रुचि आता है, क्योंकि व्यक्ति दुखी है। तो इसलिए जब तक व्यक्ति दुखी नहीं होता है और इस दुनिया में उसको प्रॉब्लम नहीं आता है, तभी तक वो कुछ आध्यात्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। और ये चीज नारद मुनि को मालूम था, अगर मैं उन लोगों को श्राप नहीं दूंगा, इन दोनों को पेड़ नहीं बनाऊंगा, तो ये लोग रुचि नहीं रखेंगे आध्यात्मिक कार्य में। क्योंकि दोनों सोच रहे हैं कि हम खुश हैं, दारू पी के स्त्रियों के साथ हम खुश हैं, अभी आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसलिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट किए। इसमें तात्पर्य में प्रॉपर बताते हैं कि नारद मुनि एक अच्छे डॉक्टर है, इसलिए अच्छा ट्रीटमेंट किए। कभी कभी होता है कुछ घाव हो गया हमारा, जो कि ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं बाहर से, और अंदर से सड़ गया रहता है, और उसको हम दर्द तो होता है मगर ऑपरेशन करने के लिए हम पीछे हटते, नहीं 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 पूरा काटेंगे, सब दबा के निकालेंगे, पास कौन जाएगा हॉस्पिटल में, इंजेक्शन लगाएंगे। हम कुछ क्षण के लिए, हो सकता है एक घंटा के लिए ट्रीटमेंट हो, मगर उसको मना करते हैं और पूरा जीवन हमको दुख भोगना पड़ेगा। मगर डॉक्टर क्या करते हैं, पकड़ के हमको पूरा दबा के सारे पस निकाल देते हैं। हो सकता है कुछ देर के लिए ज्यादा दर्द हो, मगर बाद में हमको हमेशा के लिए शांति मिल सकता है। इसलिए ये ऑपरेशन करना जरूरी है। जब ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो हमको ऑपरेशन करना बहुत जरूरी पड़ता है, स्पेशल ट्रीटमेंट करना जरूरी है। इसलिए नारद मुनि उनको जानते थे उनका असली प्रॉब्लम क्या है, तो उनको क्या किया, वो श्राप दिए। उनको आशीर्वाद भी दे सकते थे, मगर उनको क्या किया, श्राप दिया, और वही उनका आशीर्वाद है। क्योंकि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवा होता है, हर बीमारी के लिए एक ही दवा नहीं दे सकते आप। ऐसा नहीं कि एक को बुखार हुआ आज तो हमने कुछ टैबलेट लिया, डॉक्टर ने हमको लिख के दिया है, और उसका कलर कैसा था, उसका बाहर का कवर का कलर ब्लू था, तो हम खाए ठीक हो गए। अभी दोबारा किसको बुखार हुआ तो हम बोलेंगे ये ब्लू कलर का एक आता है दवा, वो जाके हॉस्पिटल से ले लो, क्या ये चलेगा ऐसा? नहीं, कलर से हम नहीं ले सकते। होता है ऐसे गांव में करते, अगर दवा खाली हो गया तो वही खाली दवा को देते, बोलते यही दिखा के दवा लेके आ जाना, क्योंकि मुझे भी बुखार हुआ था, ऐसा नहीं चलेगा। सेम चीजों से आप सेम दवा सबको नहीं दे सकते, तो डॉक्टर चेक करेगा आपको, आपका उम्र पूछेगा, उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करेगा। जय श्री श्री राधा गिरिधर भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। वैसे हर एक व्यक्ति का अलग अलग भौतिक बीमारी है, ये भव रोग हो गया है, तो इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग दवा चाहिए। तो इसलिए साधु यानी डॉक्टर का जरूरी है, और साधु के पास जाना जरूरी है। हम क्या करते हैं, साधुओं के पास ना जाके हम अपने हिसाब से आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हम अपने हिसाब से धार्मिक कार्य करते हैं, मंदिर जाना और थोड़ा दान दक्षिणा देना, यज्ञ करना, धाम में घूमना, ये सब चीजें हम अपने हिसाब से करते हैं, और इसमें आध्यात्मिक कार्य कम और खुद का जो मजा लेना ज्यादा रहता है इसमें, इस कार्यों में, तो इसलिए हमको प्रगति नहीं होता है। इसलिए हमको डॉक्टर की जरूरी है, हर एक व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, साधु के पास जाना ही चाहिए अगर हमको आध्यात्मिक प्रगति करना है तो। ऐसे यहाँ नारद मुनि ये दोनों को प्राप्त दिए कि आप जाके पेड़ बन जाइए। सिर्फ पेड़ बनने के लिए नहीं बोले कि ठीक है अभी डॉक्टर के पास गए कि हमारा ये बीमारी है तो आपको बता देगा हाँ आपका ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, अगर ये घाव अगर ज्यादा ठीक नहीं हुआ तो आपको कैंसर हो जाएगा बाद में। डॉक्टर बोल दिए अभी बोले जाओ अभी घर, तो अगर सिर्फ प्रॉब्लम बता के छोड़ देंगे तो क्या वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा? नहीं। तो इसलिए नारद मुनि क्या किए, सोल्यूशन भी दिए, आप लोग पेड़ बन जाएंगे क्योंकि आप लोग अभी अहंकार में अंधे हो चुके हैं, मगर पेड़ बनने के बाद भी आपको याद रहेगा कि आप लोग देवताओं के पुत्र थे। आपको पूरा देवताओं के 100 साल जब पेड़ बन के रहेंगे आपको पिछले जन्म पूरा याद रहेगा। ये कितने बड़ा तकलीफ की बात है। पेड़ बनने के बाद अगर भूल चुके होते हैं कि हम देवता थे तो हो सकता है कि शांति से रह सकते थे, मगर वो उनको याद है कि हमें देवता था, दो लोग दोनों भाई और दोनों भाई दो पेड़ बन के खड़े, तो 100 साल तक वो भी देवताओं का, तो कितना तकलीफ हुआ रहेगा उनको। तो हर वक्त वो यही पछताते थे कि हमने क्यों गलती किया, हमको पेड़ बनना पड़ा। 100 साल तक ये पश्चाताप करते 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 उनके सारे अनर्थ जल गए। और क्योंकि वो वृंदावन धाम वो नित्य रहता है तो इसलिए उस धाम के प्रभाव के द्वारा वो शुद्ध हो गए और भगवान का दर्शन करने का योग्य बन गए। पहले साधु संघ किए फिर बाद में धामवास किए और ऊपर से पश्चाताप कर रहे थे अपनी गलती पर, तो व्यक्ति क्या होता है भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो हमको भी 3 चीज अपनाना चाहिए, पहले हमको साधु संघ करना चाहिए जो हमको मार्ग बताएंगे, और दूसरा हमको धामवास करना चाहिए। धामवास यानी जरूरी नहीं वृंदावन मायापुर जाइए, मगर घर में हम भगवान को स्थापना करके धामवास कर सकते हैं। मीरा रोड है ना हमारा हरे कृष्ण धाम, ये धाम में भी रह सकते हैं क्योंकि यहाँ मंदिर है राधा गिरिधारी जी, तो भगवान के सानिध्य में रहना, रह के फिर हम अगर ये पश्चाताप करेंगे हम पिछले क्या गलती किए, और ये पश्चाताप करके हमको अगर भक्ति मार्ग को अपनाएंगे सीरियस होके तो हम भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए 3 चीज का जरूरी है, और वो भगवान का दर्शन किए, दर्शन करने के बाद भगवान उनको बताया कि मैं आपको इसलिए दर्शन दिया है क्योंकि आपको कौन बताया था दर्शन मिलेगा करके, नारद मुनि जो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए साधु भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए साधु जब कुछ बोलते हैं तो सत्य होता है। और साधु कभी श्राप दिया या आशीर्वाद दिया या आप साधु को निंदा किया गुणगान किए, कैसे भी करके आप साधु के निकट आते ही आप शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि साधु हमेशा दूसरों के भलाई के लिए ही वो इच्छा करता है और भगवान को प्रार्थना करता है। तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं ये कोई ईर्ष्या के कारण वो श्राप नहीं दिए थे कि मुझे निंदा किए करके, वो जो भक्त रहता है वो हमेशा ये विवेक उनके पास रहता है, विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर रहता है, वो परखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ये सोच विचार करके वो श्राप दिए थे। सिर्फ ये नहीं देखे थे कि ये लोग मेरा निंदा किए हैं इसलिए उन लोगों को मैं श्राप दे दूंगा, मुझे सम्मान नहीं दिए, हाँ मैं आया और ये लोग वैसे ही खड़े हैं हाँ पेड़ की तरह, इसलिए श्राप नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए कि ये लोग इंद्रतृप्ति कर रहे थे, हाँ दोनों कामुक है इंद्रतृप्ति कर रहे हैं स्त्रियों के साथ इनको श्राप देता हूँ। उनका कारण क्या था, वो क्यों श्राप दिए, क्योंकि ये वो देख पाए कि इनका असली बीमारी क्या है, क्योंकि ये लोग बहुत अहंकार हो चुके हैं, घमंडी है दोनों, क्योंकि कुबेर सबसे अमीर है, वो सारे जो संपत्ति है उसका मालिक है, उनको जिम्मेदारी दिया गया है तो वेल्थ डिपार्टमेंट, इसलिए उनके बेटे हैं इसलिए उनको क्या कि बहुत घमंड हो चुका था, इसलिए वो नारद मुनि का परवाह ना करते हुए शराब पी के स्त्रियों के साथ वो लोग क्रीड़ा कर रहे थे जल में। तो इसलिए ये अहंकार को नष्ट करने के लिए क्या किया, उनको पेड़ बनाए। पिछले श्लोक में हम देखे कि गरीब रहना कितना जरूरी है, व्यक्ति इंद्रिय नियंत्रित कर सकता है और भगवान के पास जा सकता है, और साधु उन लोग के घर पे आते हैं और उन लोग को ही ज्यादा संग देंगे जो कि गरीब है, तो इसलिए ये श्राप दिए हैं, ये सोच विचार करके ये श्राप दिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुस्से से आके कर दिए, और कभी उन लोग को गुस्सा नहीं आता साधुओं को, क्यों, क्योंकि ये वो लोग वो स्तर में रहते हैं। इसमें एक श्लोक बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, ब्रह्म भूयाय कल्पते सगुणान समतिथ्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो वैष्णव जो होते हैं वो हमेशा वो ब्रह्म के स्तर में रहते हैं, ब्रह्म पद पर स्थित होते हैं, इसलिए वो कभी गलती नहीं करते हैं, ना कभी भौतिक गुणों के वशीभूत होते हैं। ये 3 गुणों के अंदर आके ही व्यक्ति गलती करता है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, इसलिए जो साधु रहते हैं वो क्या कर 3 गुणों से परे होते हैं, इसलिए कुछ भी बोलते हैं वो परफेक्ट रहता है, वो कभी गलती नहीं हो सकता है। तो इसलिए नारद मुनि सोच विचार करके श्राप दिए हैं, इस चीज को हमको मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम भी क्या करेंगे, हमको कोई अगर सम्मान नहीं दिया हम आए कोई दंडवत नहीं मरा, हरे कृष्ण बोला नहीं, तो हम भी गुस्सा हो जाएंगे कि नल कुबेर जैसा आप दोनों भी, नल कुबेर मणिग्रुप जैसा आप दोनों भी अभी अंधे हो चुके अहंकार से, मैं आप लोग को श्राप देता हूँ, पेड़ बन जाओ। हम श्राप नहीं दे सकते क्योंकि हम पहली बात हम साधु है नहीं, और दूसरा ये कि हम उनके भलाई के लिए नहीं दे रहे क्योंकि हमको अपमान हुआ इसलिए हम दे रहे हैं हमारे स्वार्थ के वजह से, तो ये उनको भी नुकसान हो सकता है और हमको भी नुकसान है, तो इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि ईर्ष्या के वजह से किसको श्राप नहीं देना चाहिए। कभी हम जप करते हैं ऐसा सोचते हैं मेरे पास बहुत शक्ति आ गया है, आध्यात्मिक शक्ति, मैं भी किसको श्राप दे सकता हूँ, कोई कुछ दिया तो हम बोल देते हैं चलो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहली बात हमारा श्राप लगेगा नहीं क्योंकि हम सच बोलते नहीं, जो झूठ बोलते हैं उसका कोई वाणी का वैल्यू ही नहीं रहता है, जो हमेशा सच बोलता है और बोला गया कि मिनिमम 12 साल जो सच बोलता है बिना झूठ बोले उसका वाणी शक्ति हो जाएगा, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा, तो इसलिए हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। तो हमेशा भगवान का नाम प्रचार कीजिए, वही सत्य है, परम सत्य है, झूठ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए नारद मुनि की ओर से ये उनको आशीर्वाद था, ये कोई श्राप नहीं था, ये आशीर्वाद था कि ताकि उनको भगवान का दर्शन हो गया। कैसे मालूम पड़ेगा कि गुस्से से नहीं किए, उनको श्राप दे के उनके नुकसान के लिए अगर श्राप देते अंतिम में उनको भगवान का दर्शन नहीं होता, तो इसलिए अंतिम में भगवान का दर्शन हुआ। फिर भगवान का दर्शन हुआ ये नहीं, उन लोग का भी सुधार आ गया, वो बाद में प्रार्थना करते भगवान को, प्रार्थना करके फिर अपने जो अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो इसलिए अगर साधु कृपा करता है तो लास्ट में अंत में हमको भगवत प्राप्ति होता है, इसलिए हम किसको श्राप देंगे उसको भगवान का दर्शन होगा ऐसा नहीं है, तो इसलिए किसको श्राप मत दीजिए। और दूसरी ओर से ये दो भाई ये क्या कर रहे थे, इंद्र चुक्ति में इतने मग्न थे, शराब पी रहे थे और स्त्रियों के साथ वो लोग क्रीड़ा कर रहे थे, इतने मग्न थे और अंधे हो चुके थे अहंकार के बस पे दोनों भाई। इसलिए इस दोनों व्यक्ति बारुणी तथा माधवी नामक शराब पीकर अपने इंद्रियों को बस में ना रख सकने के कारण स्वर्ग के ऐश्वर्य गर्भ से अंधे और स्त्रियों के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, आंख होते हुए भी वो अंधा हो जाता है। कैसे अंधा, वो अपने आप को भूल जाता है वो व्यक्ति, इसलिए उसका हृदय पत्थर के बराबर हो जाता है, इसलिए इंद्र तृप्ति मना किया गया है। तो अगर इंद्र तृप्ति करेंगे हम क्या करेंगे, हम अपने आप जो असली स्वार्थ है वो भूल जाएंगे। और कैसे कार्य करेंगे, जैसे कि पशु कार्य करते हैं, पशु क्या कार्य, चार कार्य पशु करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनी, चार ही कार्य पशु करते हैं और उनका सारा जो बुद्धि है उसमें ही लगता है, वो कुछ भी करेंगे वो चार चीज उसका बेसिक रहेगा। अब जो मन में आए वो करेंगे, कहीं भी भूख लगा खाएंगे, कहीं भी सोएंगे, कुछ भी करेंगे वो लोग, ये सोचते नहीं अच्छा बुरा। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति में लग जाता है, उसका मति इंद्र तृप्ति में अगर लग जाता है वो क्या करते हैं, चार चीज वो भी चार चीज करता है और व्यक्ति भूल जाते हैं सही गलत क्या है। तो इसे सही गलत भूलने के कारण वो भी पशु के स्तर में आ जाता है और वो दो पैर वाला पशु कहला जाता है, उसको ये मालूम नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है, पशु के स्तर में आके वो सारे गलत कार्य करने लगता है। जैसे पशु बाहर घूमते हैं, कहीं भी खाते हैं, कहीं भी सोते हैं, वैसा व्यक्ति वैसे ही करता है। तो ऐसा बोला गया कि खाते वक्त हमको बैठ के खाना चाहिए, एक जगह खाना चाहिए जहाँ कोई ना देखे, अपने परिवार के साथ या भक्तों के साथ। अभी पशु जैसे खड़े खड़े रोड पे खाते हैं, हम भी वड़ा पाव रोड पे ही खाते हैं, सबसे गंदा जगह जो स्टेशन, जहाँ थूकने के लिए भी मन नहीं करता, इतना दुर्गंध आता है, उस जगह पे खड़े खड़े वड़ा पाव खा सकते हैं, यानी वो पशु के स्तर में इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, कहीं भी कुछ भी करते हैं। तो हम जब गाँव में थे, हम सोचते थे जब टीवी देखते थे सोचते थे लड़के लड़की घूमते हैं सिर्फ टीवी में दिखाने के लिए, सच में कौन हिम्मत करेगा ऐसा, क्योंकि गाँव में ऐसा होता नहीं। जब हम बॉम्बे आए इधर मंदिर में देखे सामने रॉयल कॉलेज के सामने सब लड़के लड़की जा रहे थे, मैं बोला ऐसा संभव है क्या, कौन सा युग आ गया ये, इतना आश्चर्य बात है इधर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है मगर उन लोग कितने साधारण रूप से ले रहे हैं, क्योंकि ये पशु के जीवन, पशु कभी सोचता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे, वो जस्ट करता है जो इच्छा वो करता है। वैसे मनुष्य भी पशु के स्तर में जब आता है ये आहार निद्रा भय मैथुन ये खुला करते हैं पशु के जैसा और उसको कोई शर्म नहीं आता है। जिसको भय नहीं है और लज्जा नहीं है वो पशु के समान है, तो लज्जा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। तो इसलिए दोनों बेशर्म हो गए थे दोनों भाई, इसलिए दोनों नारद मुनि आने पर भी दो स्त्री तो उनको थोड़ा शर्म था इसलिए कपड़े पहन लिए और ये दोनों भाई कपड़े भी नहीं पहने और पी के आंख ऐसे से घूम रहा था, लाल हो गया था, शराब पी के खड़े थे नारद मुनि के सामने। नारद मुनि लंबा प्रवचन देने के बाद उनको श्राप दिया दोनों जाके पेड़ बन जाइए, तो इसलिए जो विवेक है, विवेक बुद्धि रहता है, ये सही और गलत परखने परख करने का बुद्धि, ये इंद्र तृप्ति करने से चला जाता है। और खास करके व्यक्ति जब शराब पीता है और मांसाहार करता है, ये जो हम चार नियम बताते हैं, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, जुआ खेलना, ये चार चीज करने पर व्यक्ति का विवेक चला जाता है। तो विवेक चले जाने पर वो सही गलत को परख नहीं कर सकता है और हमेशा गलत ही करेगा वो, ये वो पशु के स्तर में आ जाता है। इसलिए हमको बोलते हैं इस्कॉन में पहले हमको ये चार नियम पालन करना चाहिए, उसके बाद हम सोलह माला कर सकते हैं, नहीं तो हम पशु के स्तर में भक्ति नहीं कर सकते। तो हमको पहले मनुष्य बनना चाहिए। तो ये दोनों भाई लज्जा त्याग करके पशु के स्तर पर कार्य कर रहे थे, इसलिए उनको नारद मुनि ने श्राप दिया है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को इंद्रिय नियंत्रित जरूरी है, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो बाद में, उनको भौतिक संसार में भी अगर अच्छे से जीना है तो भी हमको इंद्रिय नियंत्रित करना ही पड़ेगा। बहुत सारा चीज में हमको रेस्ट्रिक्शन है, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। देखिए हम बोलेंगे मैं सिगरेट पीऊंगा तो सिगरेट पीते पीते एक दिन हमको कैंसर हो जाएगा। अगर जो ज्यादा शराब पीते हैं उसको क्या होता है, लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम बोलेंगे नहीं मैं अभी मांसाहार ज्यादा करूंगा तो मांसाहार ज्यादा करने पर भी बहुत सारा बीमारियां क्रिएट होता है, क्योंकि उसमें इतना रजोगुण है वो शरीर के लिए हानिकारक है। बहुत सारे डॉक्टर लोग भी बताए कि ज्यादा अगर जो मांसाहार करते वो बीमार पड़ता है। तो एक व्यक्ति था वो बहुत मांसाहार करता था, मुस्लिम था, इतना मांसाहार किया तो बाद में मर गया। बाद में डॉक्टर लोग उसको रिपोर्ट में बताया कि वो इतना मांसाहार किया इसलिए वो मर गया, मांसाहार करते करते इतना मांस खाता था वो व्यक्ति। इसलिए मांसाहार करना भी वो हानिकारक है। हम इंद्रिय तृप्ति करते करते कितना करेंगे, हम ज्यादा करेंगे तो हमको बाद में दुख भोगना पड़ता है। अगर कोई अलग अलग चीज की इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो क्या होता है, कोई सोचे ज्यादा टीवी देखता है तो उसको क्या होता है, आंख का खराब हो जाता है। तो इंद्रिय तृप्ति इस दुनिया में हम अगर करेंगे तो हमको दुख ही दुख मिलेगा, इसलिए हमको इंद्रिय नियंत्रित करना ही पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं मैं अपने हिसाब से जीऊंगा इस दुनिया में, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं है। हम अगर सोचिए रोड पे राइट साइड जाएंगे कि हमको पुलिस छोड़ेंगे, आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ के आपको दंड देंगे। तो एक व्यक्ति साइकिल में जा रहा था, सोचा कि मैं फ्री हूँ, मैं किसको डरता नहीं, साइकिल के लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए, हमको टोल टैक्स भी भरना नहीं पड़ता है। तो साइकिल में ऐसे ही बिंदास घूम रहा था, घूमते घूमते वो क्या कि हाथ छोड़ के घूम रहा था साइकिल पे, कभी कभी साइकिल अगर हैंडल टाइट है तो गिरते नहीं व्यक्ति। तो बाद में ट्रैफिक पुलिस उसको बुलाया, उसके हैंडल को पूरा लूज कर दिए, पूरा लूज कर दिए, बोले अब भी हाथ छोड़ के चलो नहीं तो पीटूंगा तुमको। तो व्यक्ति हाथ छोड़ के कैसे चलेगा, हैंडल लूज है। तो उसको बहुत पिटाई की, उसको फिर फाइन भी डाले। तो इसलिए हम स्वतंत्र नहीं है, हमको नियंत्रित करना ही है, अपने आप को संयम करना ही पड़ेगा। अगर संयम नहीं करेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा हर एक परिस्थिति में। हाँ, हर एक जगह लिखा रहता है, यहाँ देखिए साइलेंस जोन है, मत बोलिए, तो हमको वहाँ अंदर से नहीं बोल ही देते हम। जैसे कि हम कोई लाइब्रेरी है उसमें लिखा गया है कि बात मत कीजिए, सब लोग शांति से पढ़ रहे हैं, और आपके पुराना मित्र आ गया 10 साल पहले वाला, तो हम क्या करेंगे, देखते खुश हो जाएंगे, अरे आप कब आए। तो अपने आप को संयमित नहीं कर सकते हैं, इतने इतना फोर्स है हमारे अंदर बोलने का। तो इसलिए इंद्र तृप्ति करने का स्वभाव इतना है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। खुशी, इतना खुशी का मौका आता है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। या तो कभी कभी बहुत दुख की मौका आया तो भी कंट्रोल नहीं कर सकते हम। सोचिए आपको सब लोग को बोले कि चलिए हम सब लोग जाते हैं यात्रा में, सब लोग जाने के बाद गाड़ी में चढ़ते वक्त बोलेंगे आपका टिकट तो कैंसिल किया है, आप इधर क्यों आए बैग लेके, जाओ मंदिर वापस, तो कैसे लगेगा हमको। उधर क्या शांति से रह पाएंगे, पूरा उनको गाली देना चालू करेंगे, अब समझते नहीं है कैसे आदमी है, अब सबको लेके जा रहे हैं, मेरा ही टिकट कैंसिल कर दिया आपने। तो इसलिए हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप पर बस में नहीं है, हमारा मन और इंद्रिया हमारे बस पे नहीं है। इसलिए हमको मन और इंद्रियों को नियंत्रित में रखना चाहिए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, जो कि जिसको राजा माना जाता है सारे इंद्रियों का, अगर इसको बस में नहीं करेंगे तो हम हर जगह दुखी दुख मिलेगा हमको। आध्यात्मिक प्रगति छोड़िए भौतिक जीवन में भी आप शांति से नहीं जी सकते, इसलिए इंद्रिय नियंत्रित बहुत जरूरी है। ये नल कुबेर ये नहीं बोले थे कि हमको जप में बाधा होता है, पीठ में पी लेता हूँ तो जप नहीं कर पाता हूँ, जप किया आता है, ऐसे नहीं बोले थे वो लोग, जप कर ही नहीं रहे थे वो लोग, फिर भी उनको दंड मिला, पेट भरना पड़ा। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको दंड मिलता है। और प्रोपद एक तात्पर्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति अगर अधिक, जो व्यक्ति कामुक है तो उसको पेट बनना पड़ता है, या कोई ऐसा योनि मिलता है जिसमें वो काम वासना पूरा नहीं कर सकता, ऐसा निम्न योनि मिलता है, खास करके पेट का शरीर मिलता है, वो हम ऐसे खड़ा ही रहना पड़ता है, इच्छा है मगर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोनों भाइयों को पेड़ बनना पड़ा, वो भी 100 साल, देवताओं के 100 साल तक वो लोग पेड़ बनना पड़ा, बाद में भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए इंद्रिय नियंत्रित बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति को। इसलिए हम जब प्रचार करते हैं ये नहीं बताते हैं कि भौतिक दुनिया कितना अच्छा है, हम क्या बताते हैं भौतिक दुनिया कितना दुखमय है, दुखालय है। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में बता दी दुखालयम अशाश्वतम, ये चीज को बताना जरूरी है। अगर हम नहीं बताएंगे, इसलिए लोग बहुत सारे प्रवचन में बताते हैं कैसे यहाँ हम अच्छे से रह सकते हैं, वही बताते हैं। योगा कीजिए, अच्छे से आप प्राणायाम कीजिए तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जो भी कुछ इस दुनिया में आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ कैसे अच्छे से रहने के लिए, और ये हमको क्या करता है और अंधा कर देता है। और इधर ही रहने के लिए हम प्रयास करेंगे। कोई व्यक्ति जेल के अंदर है तो उसको जेल से कैसे बाहर आएगा वो मार्ग देना चाहिए। अगर बोलेंगे जेल में टीवी लगाएंगे, जेल में अच्छा खाना देंगे, अच्छा कपड़ा देंगे, तो व्यक्ति जेल में ही रहेगा, बाहर क्यों आना चाहेगा, बाहर मेहनत करके कौन कमाएगा। तो इसलिए हमको इस भौतिक दुनिया कैसे दुखालय है, इसी चीज को लोगों को बताना चाहिए कि कितना दुख है इस दुनिया, कितने हर प्रकार के हमको दुख मिलता है। कितने प्रकार के दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधि भौतिक, अधि दैविक और अधि आत्मिक। जन्म होते हैं तो जन्म कितना दुखदायी है कि जन्म होते पर माँ को भी दुख है और बच्चा को भी दुख है। 9 महीना पेट के अंदर जो उल्टा लटक के रहता है तो उसको तभी वो जानता है कि मैं लटक के हूँ, बहुत दुख मिलता है। प्रार्थना करते हैं हे भगवान जल्दी बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। बाहर आते भूल जाता है और बाहर आते वो रोना चालू करते हैं, कहाँ आ गया मैं दुखालय में, और वो रोता है, सब लोग हंसते हैं। तो इसलिए दुख है, और माँ को भी दुख है और वो बच्चा को भी दुख है जब जन्म लेता है। फिर जन्म मृत्यु, मृत्यु होता है तो 40,000 बिच्छू काटने के दर्द होता है। आप बोलेंगे नहीं हमको तो मालूम नहीं कैसे, क्योंकि हम मरते वक्त मालूम पड़ेगा। सब लोग कभी लास्ट आपका लास्ट अनुभव वही रहेगा इस दुनिया का, संसार का, कितना दुखालय है, फिर शरीर छोड़ देंगे, इतना कष्टदायी है मृत्यु। अगर कष्टदायी नहीं है तो लोग मरना नहीं चाहते, अगर आसान होता तो सब लोग मरने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि कष्टदायी इसलिए मृत्यु के लिए डरते हैं लोग। अंतिम समय तक मर जाएगा, डॉक्टर बोला मर जाओगे तो भी बोलते कितना पैसा चाहिए ले लो मुझे बचा लो, मृत्यु इतना खतरनाक है। और जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, बुढ़ापा में सारे इंद्रिय काम नहीं करते हैं, आंख को बराबर दिखता नहीं है, और खाने पे कुछ चबा नहीं पाएंगे क्योंकि दांत नहीं रहता है और बाल भी नहीं रहता है, फिर झुक के चलना पड़ता है लकड़ी लेके किसके सहारा पे, इतना प्रॉब्लम आता है बुढ़ापा में। और व्याधि बीमारी तो पूरा बचपन से लेकर व्याधि चालू हो जाता है। अगर ये खास करके कलयुग में हम ऐसे आहार करते हैं, हमको बचपन से ही बीमार चालू हो जाते हैं, हर बार वो दवा पीता ही पीता है, दवा खाता है व्यक्ति बचपन से। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर अधि भौतिक, दूसरे जीवों से दुख मिलता है, दूसरे कोई दुश्मन है हमारा, गाली दिया, कोई मारा, फिर चींटी काटा, फिर हमको मच्छर काटा, सांप काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, इतने सारे प्रॉब्लम है। अधि दैविक, हमको भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, और बारिश नहीं हुआ या बारिश ज्यादा हो गया, बॉम्बे में ज्यादा बारिश होता है, यहाँ तक पानी आ जाता है मंदिर में, कितना प्रॉब्लम है, अंदर आने को नहीं होता है। या तो ठंडी ज्यादा हुआ, स्नान भी नहीं कर सकते, सुबह उठने का मन नहीं करता है, या ठंडी हुआ ही नहीं ठंडी के सीजन में, ऐसे होता है। तो ये सब अधि दैविक है जो कि देवताओं के द्वारा दिया जाता है, और ज्यादा धूप होता है कभी कभी, तो इसलिए ये सब क्लेश है। और लास्ट में और क्या है, अधि आत्मिक, आत्मिक मतलब स्वयं से जात हुआ प्रॉब्लम। हम क्योंकि हमारे मन इतना अनियंत्रित है, हमको कितना दुख देता है, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन ही है, हमारा मन हमको बहुत कष्ट देता है, जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज करवाता है मन, इसलिए हमको हमेशा दुख मिलता है। इतने सारे प्रॉब्लम है मगर लोग क्या बोलते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, कभी बोलते नहीं मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो इसलिए दुख मिलने के बाद भी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, वही माया है, उसको ही मोह बोलते हैं। तो इसलिए व्यक्ति हमेशा मोह में है, मतलब वो जानता है, वो जो बोलता है मैं सुखी हूँ वही माया में, जिसको मालूम है मैं दुखी हूँ वो व्यक्ति माया से बच सकता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं प्रॉब्लम में हूँ, और वो हमेशा समाधान के लिए भाग सकता है। किसको अगर मालूम नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है तो कैसे डॉक्टर के पास जाएगा और सोल्यूशन मांगेगा। और देखिए अगर किसको पेट दुखता है या वो चक्कर आता है, उल्टी आता है, उसको मालूम नहीं कि उसके पेट में अपेंडिक्स हो जाता है ना, जिसकी वजह से सब लक्षण प्रकट होता है, और उसको मालूम नहीं तो साधारण दुख से लेगा, चल रहा है चलने दो। अगर उसको मालूम पड़ेगा आपके पेट में अपेंडिक्स हो गया है, फट जाएगा तो मर जाएगा व्यक्ति, अगर कोई बताया उनको तो डर के मारे क्या करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। तो इसलिए हमको पहले जानना चाहिए हमारा बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर नहीं जानेंगे तो समाधान की ओर नहीं जाएंगे। फिर भी कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है मगर बच्चे लोग ध्यान नहीं देते, तो कौन ध्यान देते हैं, माता पिता ध्यान देते हैं, जैसे कि यहाँ नारद मुनि ध्यान दिए, क्योंकि ना उन लोग को पूरा भूल चुके थे कौन सा बीमारी, उनको उनको भी मालूम नहीं था, वो सोचते थे हम खुश है, मगर नारद मुनि आके उन लोग को श्राप दे के उनको दंड दिए, उनको ऑपरेशन कराए, फिर जाकर उनको भगवान का दर्शन हुआ, वहाँ स्वस्थ हो गए। तो इसलिए हमको इंद्रिय तृप्ति को रोकना ही चाहिए, अगर इंद्रिय नियंत्रित नहीं करेंगे आप भौतिक जीवन में भी आप दुखी रहेंगे, आध्यात्मिक जीवन जीवन का तो सवाल ही नहीं उठता है, अगर इंद्रिय नियंत्रित नहीं करेंगे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको इंद्रिय नियंत्रित बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको दंड मिलेगा हाँ प्रकृति के द्वारा। आप बोलेंगे मैं भक्त हूँ मैं ज्यादा स्वीट खा ली तो क्या हुआ, नहीं आप ज्यादा स्वीट खाएंगे तो आपको बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मैं भक्त हूँ तो मैं ये गलती कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं भक्ति करता हूँ, नहीं कोई भी हो प्रकृति का नियम सबको लागू होता है, आप अगर गलती करेंगे आपको दंड मिलेगा। अगर मैं भक्त हूँ आग के अंदर हाथ डालूंगा तो क्या आग हाथ जलेगा, नहीं जल जाएगा। मैं भक्त हूँ करके बिना टिकट का ट्रेन में जाऊंगा क्या हमको पकड़ेंगे, नहीं पुलिस पकड़ेंगे। तो इसलिए भक्त है या अभक्त है कोई भी हो उसको प्रकृति का नियम पालन करना ही पड़ेगा, कुछ लिमिट तक ही आप अलाउ कर सकते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करो, उसके बाद लिमिट क्रॉस करेंगे तो ये दोनों का जैसा हाल होगा। तो इसलिए हमको इंद्रिय नियंत्रित इंद्रिय संयम जरूरी है, आत्म संयम करना ही पड़ेगा तभी जाके हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए सारे कार्य जो भी है इंद्रिय तृप्ति क्यों करते हैं लोग, क्योंकि उन लोग को सुख चाहिए, उन लोग को दुख इतना दुख मिलता है संसार में उसको छुटकारा पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं सुख के पीछे भागते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। असलियत में इस दुनिया में सुखी सुख करके कुछ है नहीं, मगर जो सुख हम सोचते हैं वो सुख नहीं है, वो क्या है दुख से निवारण है थोड़ी देर के लिए। जब व्यक्ति पूरा हफ्ता ऑफिस में जाता है टेंशन में रहता है पूरा पूरा हफ्ता बिजी होते होते उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो क्या करते हैं संडे छुट्टी लेता है, और इसलिए उसको क्या हफ्ते में कौन सा बार सबसे प्रिय है रविवार, क्योंकि वो छुट्टी मारते हैं, वो टेंशन से दूर है शांति से सो सकता है, तो इसलिए उसको अच्छा लगता है। पूरा बहुत पक गए पढ़ते पढ़ते बच्चे लोग, कभी अगर कुछ पिकनिक निकल गए तो उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्यों पहले बोलो पहले घर से निकलो गाड़ी से ट्रिप निकलते फिर जाके घूम के आते हैं, हो सकते हैं उधर कुछ नहीं हो देखने के लिए फिर भी वो लोग चाहते हैं बाहर जाए, क्यों क्योंकि पढ़ते पढ़ते लोग परेशान हो जाते हैं। तो दुख से निवारण ही उसको सुख मानते हैं, असलियत में भी सुख नहीं है। कोई बीमार है उसका बीमारी ठीक हो गया तो बहुत खुश हो जाता है, अरे मैं वो डॉक्टर के पास गया एक ही बार दवा से ठीक हो गया बहुत खुश हूँ मैं, आप तो दुखी थे दुखी निवारण से आप सोचते हैं कि मैं खुश हूँ, असलियत में कुछ सुख नहीं है। किसको बहुत प्यास लग रहा है पानी पिया तो बहुत अच्छा लगता है, यानी उसको प्यास का दुख को निवारण करने पर उसको वो सुख मानता है, असलियत में कुछ सुख नहीं है। सुख सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में है, वो भी आत्म संयम से ही आपको असली सुख मिल सकता है इंद्रिय नियंत्रित करने पर ही। तो इसलिए सुख के लिए लोग भागते हैं इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और ये मालूम नहीं उन लोग को अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको क्या सुख मिलेगा, हम कोई शांति ही नहीं तो सुख कहाँ से आएगा। तो इसलिए हमको पहले शांति प्राप्त करना पड़ेगा सुख के लिए, और शांति प्राप्त करने के लिए क्या फॉर्मूला है पीस फॉर्मूला, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञानत्वा माम शांतिम रक्षति, वो शांति प्राप्त कर सकता है जो भगवान को जानता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, सारे यज्ञ तपस्या का भोक्ता कौन है कृष्ण है। सर्वलोक महेश्वरम, ये सारे संसार का मालिक वही है। सुहृदम सर्वभूतानम, वही सबके मित्र है, वही सबका भलाई वही एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो जो जानता है तीन चीज वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। अगर भगवान को भोक्ताराम जो जान लिया वो खुद इंद्रिय तृप्ति करना बंद कर देगा, वो सारे कार्य भगवान के लिए करेगा, सारे इंद्रिय वस्तु जो है भगवान के सेवा में लगाएगा, तो व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। और वो किसी चीज को अहंकार नहीं रहेगा कि मेरा घर मेरा परिवार ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये सब चीज छोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है सर्वलोक महेश्वर सब चीज का मालिक कौन है कृष्ण है, तो शांति प्राप्त कर सकता है। और तीसरा चीज है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, वो अगर जानता है भगवान ही मेरा सुहृदय मेरा भलाई भगवान ही चाह सकते हैं, तभी वो शांति प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति से आशा नहीं करेगा। कोई कोई पत्नी से आशा करते हैं कि मुझे सुखी करेगी, कोई बच्चों से आशा करता है, वो फिर वो आशा चला जाएगा, फिर भगवान पे भरोसा करेगा तो व्यक्ति शांति से जी सकता है। ये तीन चीज अगर जान लिए तो व्यक्ति शांति प्राप्त करेगा, तभी जाके उसको असली सुख जो आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा, और इस दुनिया में कोई सुख है ही नहीं। तो इसलिए हमको हम इंद्रिय नियंत्रित करना चाहिए, और ये आध्यात्मिक सुख के हमको आशा करना चाहिए, ये भौतिक सुख के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा दुखी ही दुख रहेंगे। और खास करके ये साधु गुरु और शास्त्र, ये तीन चीज हमको जब हम नजदीक जाते हैं तो हमको चार प्रकार की चीज प्राप्त होता है। सोचिए हम शास्त्र पढ़े तो शास्त्रों से चार प्रकार की चीज हमको मिलेगा। पहला कि हम अपने आप को जान सकते मैं कौन हूँ, और मैं आत्मा हूँ ये जानेंगे, और दूसरा ये जानेंगे कि मैं कितना दुख भोग रहा हूँ। ये मिरर पे जैसा काम करेगा, मैं कहाँ कौन सा स्थिति पे हूँ वो हम देख सकते हैं मिरर की तरह। तो हम परखेंगे, ठीक है मैं दुख भोग रहा हूँ, मैं इस भौतिक दुनिया में फंस गया हूँ और मैं ये स्तर पे हूँ, ये हम शास्त्र से देख सकते हैं। और दूसरा फायदा ये होगा कि इस शास्त्र पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि मैं कैसे जीना चाहिए, मनुष्य कैसे होते हैं, हमको कैसे भगवान को प्राप्ति करेंगे। जैसे कि भागवतम में बहुत सारे भक्तों के बारे में है, अम्बरीश महाराज जी सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। अलग अलग हमको उदाहरण मिलेगा कि हमको कैसे जीना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति को हम देख सकते हैं शास्त्रों से। और तीसरा चीज ये है कि हमको एक प्रोसेस मिलेगा, ठीक है ये ऐसा बनना चाहिए मुझे और मैं ये स्तर पे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं वो बन सकता हूँ, वो प्रोसेस आपको शास्त्रों से मिलेगा कि हमको भक्ति करना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, हमको ये नियम पालन करना चाहिए, तभी जाके हम वो प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में चौथा चीज है, हमको प्रोसेस के अंदर एक एक जैसे कि जप करना, सेवा करना, ऐसे शक्ति प्राप्त होता है, ये चार चीज हमको प्राप्त होता है उससे। ये चार चीज जब प्राप्त करते हैं तभी हम धीरे धीरे हमारा असली जो धर्म है भगवान की सेवा करना, कृष्ण र नित्य दास, वो स्तर पे हम पहुंच सकते हैं। तो इसलिए धर्म वही है जो कि आपके असली स्वभाव है, जो भगवान की सेवा करना वो जागृत जो करा सकता है, जो प्रोसेस उसको ही धर्म बोलते हैं। तो इसलिए हमको ये धर्म को अपनाना चाहिए। ये पशु की तरह जो जीवन है, इंद्रिय तृप्ति, जो अंधे की तरह जो आंख बंद करके चलते लोग, वैसा हमको नहीं जीना चाहिए, धर्म करना चाहिए। कौन सा धर्म? जो धर्म आपके असली स्वभाव को जागृत करा सकता है, जो कि कृष्ण का दास, वो धर्म यानी भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, तभी जाके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अंधे होकर ऐसे नल कुबेर मणिग्रीव जैसा हम स्त्रियों के साथ दारू पी के और जुआ खेल के मांसाहार करके ऐसे हम पशु की तरह जीवन बिताएंगे। इसलिए हमको साधु के शरण में जाना ही चाहिए, तभी जाके साधु हमारा ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे डॉक्टर है, तभी हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भद्रा श्रीमद् भागवतम की जय।